ब्लास्ट कर जाता तैयारा इस आग की वजह से। तो भारत जी बच के लोग, उनकी किस्मत अच्छी थी। सलमान खान साहब जो हैं जी, वो आजकल दुबई गए हुए हैं अपने कुछ काम के सिलसिले में। वहां पे हेलो मैगजीन जो है उसको ये एक इंटरव्यू दे रहे थे, और वहां पे इनके साथ जो है इनकी नीस एक्ट्रेस अलीजे अग्निहोत्री जो है वो भी इनके साथ थी। जो तो वहां पे जो एमसी थी सोफी चौधरी, उन्होंने इनसे अलीजे से पूछा कि क्या आप अपने अंकल के ऊपर किताब लिखोगी। तो अलीजे जो है वो जरा थोड़ा चुप कर गई और वो सोचने लगी। तो सलमान ने एकदम से कहा, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये मेरे बारे में किताब नहीं लिखेगी। तो अलीजे ने कहा कि इनके ऊपर क्या किताब हो सकती है, कोई किताब हो ही नहीं सकती। तो फिर से एक दफा इंटरप्ट किया सलमान खान ने, उसने कहा नहीं नहीं, जितना ये मेरे बारे में जानती है ना, इसको तो मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा कि ये मेरे पे किताब लिखे, और ये कोई बेस्ट सेलर वेलर नहीं होगी, तो इसलिए ये किताब नहीं लिखेगी। तो लोग जो हैं वो वहां पे जाहिर के बड़ा हंसे। आज जो है एक्टर प्रदीप रावत, उन्होंने बड़े रेवलेशन किए हैं, क्योंकि फिल्म मेकर ए आर मुरुगदोस जो हैं, आपको पता ही है कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो 2008 की हिंदी रीमेक थी, जो उन्होंने अपनी तमिल मूवी बनाई थी गजनी, उसका जब हिंदी रीमेक करने लगे थे तो वो सोचते थे कि मैं सलमान खान को इसके अंदर रखूंगा और आमिर खान को नहीं रखूंगा। प्रदीप रावत जो है जिन्होंने के विलन का रोल प्ले किया था, उन्होंने जिसके के ऊपर जाहिर है कि गजनी जो मूवी बनी थी, उन्होंने कहा जी कि मैंने ही मुरुगदोस को कहा था कि तुम आमिर खान को लो, सलमान खान को ना लो, क्योंकि सलमान खान बड़ा ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। वो कहते हैं जी मुरुगदोस वैसे भी उस वक्त कोई बहुत बड़ा कोई फिल्म मेकर नहीं था, और मैंने जो है काम किया हुआ था आमिर के साथ सरफरोश में 1999 में, और मुझे पता है कि वो बड़े कूल माइंड का बंदा है, और मुझे लगा कि इस रोल के लिए वो बिल्कुल राइट चॉइस है। 25 ईयर्स से वो कहते हैं जी कि मैं देख रहा हूं आमिर को, कभी ना वो शाउट करता है किसी पे, ना येल करता है, ना किसी को डिसरिस्पेक्ट करता है, ना ही एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है, जबकि हमारे सल्लू भाई जो हैं वो बड़े गर्म दमाग के हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये जो है तुम्हारे साथ, तुम जो है ना तो हिंदी बोलते हो ना अंग्रेजी बोलते हो, तो तुम आमिर को रखो, सल्लू भाई को ना रखो, क्योंकि काम कई अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन होंगी। ठीक है जी भाई, उनको जो और जनाब हमारी बाजी जो है कंगना रनावत, उसके बारे में हम क्या कहें, पता नहीं वो तबीयत उनकी सेट है नहीं है, कोई ना कोई ऐसा बयान देती हैं कि बस बंदा जो है ना अग बगोला होकर बैठ जाए। बहरहाल बाजी है, अब क्या कर सकते हैं। उन्होंने आज कहा जी कि अगर लोकसभा इलेक्शंस में मैं जीत गई तो फिर मैं जो है बॉलीवुड छोड़ दूंगी, क्योंकि बॉलीवुड की वर्ल्ड जो है बड़ी फेक वर्ल्ड है। तो बाजी अभी तक आप फिर काम क्यों कर रहे थे उस फेक वर्ल्ड में। बहरहाल जी, और उन्होंने आज ऑपोजिशन को भी जो है बड़े वो सुनाई बातें सुनाई। आपको बताइए कि थोड़े दिन पहले जो है जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा था जी कि जो अगर मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो ना सिर्फ ये वाला कश्मीर, बल्कि जो पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर है जिसको कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो कहते हैं जी मोदी जी की गवर्नमेंट वो भी लेने की कोशिश करेगी। इसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट थे फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा जी कि इतना भी सिंह साहब पाकिस्तान को ईजी ना लो, अगर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। इसी मुद्दे पर बात करते हुए कांग्रेस के लीडर मणिशंकर अय्यर ने कहा था इंडियन गवर्नमेंट को कि आप थोड़ा पाकिस्तान का रिस्पेक्ट करो, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब्स उनके भी पास हैं। आज कल्लू के अंदर ये एक कैंपेन रैली से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा ओ हमें तो आज तक ये पता था कि पाकिस्तान के पास आटा और बिजली नहीं है, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के पास चूड़ियां भी नहीं है। ऑपोजिशन कह रही है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, तो कोई बात नहीं है, हम उनको चूड़ियां पहनाएंगे, और हम जो है एक वीक हिंदुस्तान नहीं देखना चाहते हैं जहां पे के एक कांग्रेस का डरा हुआ प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट जो है वो चला रहा है। हुण बाजी उस गल दा की जवाब दईए। बाजी हम भी आपको यही कहते हैं, आपने पहले भी दो तैयारे भेजे थे, वो दोनों तैयारे पाकिस्तान ने, आपने जो कहा ना बड़ा जो आप नैरेटिव आजकल आपका बीजेपी का चल रहा है, घुस के मारा, तो घुस के मारा तो क्या फायदा हुआ, दो तैयारे भेजे दोनों हमने गिरा लिए, बंदे आपके पकड़ लिए, हाँ एक का तो आप जिक्र ही नहीं करते हो, दूसरे को हमने अच्छी पली चाय शाय पिलाई वापस भेजा है। तो बाजी ऐसी हरकतें ना करो, ना ऐसी बातें करो, पाकिस्तान ने वाकई चूड़ियां नहीं पहनी। हम अपनी मिलिट्री के बारे में जो भी कहें, हम मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है, कुछ जर्नैल जो कि गलत हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, तो आप इतना भी पाकिस्तान को हौला ना। और मुशर्रफ साहब की आपको धमकी याद है ना, मुशर्रफ साहब ने आपको क्या कहा था, मुशर्रफ साहब ने भी आपको कहा था कि पाकिस्तान को आप कोई अफगानिस्तान मत समझो पाकिस्तान ने, और फिर आपने कहा जी वो कारगिल में हमने बड़ा वो किया, उन्होंने आपको बताया था मुशर्रफ साहब ने कि कारगिल में भी हमने आपको आपकी गर्दन से पकड़ लिया था, वो तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है रोने धोने अमरीका पहुंच गई, ना पहुंची होती तो आपको सबक सिखाते। तो आप जरा थोड़ा ना जरा हौसला करो, जरा हौसला करो भाजी जान, हौसला करो। और जनाब अब आपको बताइए कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफाइंग मैचेस शुरू होने वाले हैं, लेकिन अब मुश्किल यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो पहला मैच है वो शायद नहीं हो सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है उसने कहा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कि जो ये फीफा और एएफसी के जो लोगों ने आके इधर दौरे किए हैं जिन्ना स्टेडियम के, वो कह रहे हैं कि यहां पे फ्लड लाइट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है, और अगर ये फिक्स ना की गई तो नेक्स्ट मंथ का जो क्वालिफाइंग मैच होना है वो यहां पे नहीं किसी और न्यूट्रल वेन्यू पे करना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है अपने मैचेस जो है अब शुरू करेगा सऊदी अरेबिया और ताजिकिस्तान के साथ जून 6 और 11 को इन द सेकेंड राउंड ऑफ क्वालिफायर्स। सऊदी अरेबिया के जो मैच है वो होने वाला है पाकिस्तान के साथ जिन्ना स्टेडियम के अंदर नेक्स्ट मंथ, जबकि ताजिकिस्तान का जो मैच है वो दुशंबे सेंट्रल स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान का होएगा। पाकिस्तान वैसे भी जो ग्रुप जी है उसके बॉटम पे ही है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने चारों मैच लूज कर दिए थे, 4-0 से लूज किया था इससे पहले सऊदी अरेबिया के खिलाफ इन अल अहसा इन नवम्बर, 6-1 अगेंस्ट ताजिकिस्तान एट इस्लामाबाद यहीं पे इसी जगह पे जिन्ना स्टेडियम में नवम्बर में, जॉर्डन से 3-0 इन इस्लामाबाद ड्यूरिंग रमदान जो मैचेज हो रहे थे, एंड देन 7-0 एट अमान इंटरनेशनल स्टेडियम। तो फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जाहिर है कि इंटरनेशनल एक स्पॉटलाइट पाकिस्तान पे आती है जब ये इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। तो जिन्ना स्टेडियम के अंदर वो कह रहे हैं जी कि इसको ठीक करवाएं आप, ये जितनी भी स्पोर्ट्स लाइट्स हैं। लेकिन जनाब कुछ अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन इससे पहले एक और आपको दुख की खबर दे दें। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने 3 मैच T20 सीरीज जो चल रही थी इंग्लैंड के खिलाफ वो सारी की सारी हार दी है, और तीसरा मैच जो है वो भी उन्होंने 34 रन से लूज किया है। इनको 177 रन दिए गए थे जो उन्होंने बड़े वैसे अच्छे तरीके से चेस करने शुरू किए गुल फिरोजा और सिद्रा अमीन ने, जब उन्होंने 30 रन बनाए 29 और 26 और 29 रिस्पेक्टिवली, लेकिन फिर जिस वक्त सिद्रा जो है उनको आउट किया सोफी एक्लेस्टोन ने, और फिर नेक्स्ट ही ओवर में फिरोजा को शार्ली डीन ने, उसके बाद से फिर पाकिस्तान की जरा जो कश्ती है डगमगा गई। इसके बाद निदा डार ने स्कोर किए 29 ऑफ 24 बॉल्स, आलिया रियाज ने 35 ऑफ 27, लेकिन फिर भी ये टारगेट जो है वो नहीं कर सके। इंग्लैंड की डैनी वेट जो है उन्होंने स्कोर किया 87 रन ऑफ 48 बॉल्स। निदा डार और डायना बेग ने 3-3 विकेटें ली, फातिमा सना जो है उसने एक लिया। ये टूर जो था स्टार्ट हुआ था मई 11 को, पहला मैच पाकिस्तान हारा था 53 रन से और फिर सेकंड 65 से। तो बहरहाल बड़ा दिल तो गुर्दा तो बड़ा दिखाया वैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वुमेन क्रिकेट टीम। और जनाब फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो कि बुडापेस्ट में हो रही थी उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा लिया, और पाकिस्तान के 2 बॉडी बिल्डर्स जो हैं उन्होंने मेडल्स जीते। ये जो है जो इवेंट था इसके अंदर 2 पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स थे, एक अरसलान बेग जिसने कि सिल्वर मेडल जीता इन स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी में, और शहजाद कुरैशी जो था उसने ब्रॉन्ज जीता इन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में। जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन सुहेल अनवर जो है उन्होंने विनर्स को जो है बड़ी मुबारकबाद दी। इसके अलावा पाकिस्तान एम्बेसडर टू हंगरी आसिफ हुसैन मेमन ने भी इनको मुबारकबाद दी। ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज और सुपरवाइज किया गया था बाय हंगेरियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स फेडरेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ हंगेरियन गवर्नमेंट, और ये मैचेस शुरू हुए थे जो है वो मई 18 से। पाकिस्तानी प्लेयर्स जो थे वो हंगरी में पहुंचे थे मई 16 को। तो बड़ी बात है जी कि पहली दफा इन्होंने किया और वो किया। और जिस वक्त मैं सऊदी अरेबिया में थी ना तो बार बार ये मैसेजेस आ रहे थे, जबरदस्त किस्म का ये जो मैच होने वाला था ऑल्क सिकंदर उसिक के बीच में और टायसन फ्यूरी के बीच में, तो वो बार बार कह रहे थे कि भाई आप लोग ये वॉच करने जरूर आए, ये वॉच करने जरूर आए। बहरहाल जी हम तो नहीं जा सके, लेकिन ये जो मैच हुआ है इसके अंदर जो यूक्रेनियन बॉक्सर है ऑल्क सिकंदर उसिक, उसने जनाब हराया है ब्रिटिश बॉक्सर टायसन फ्यूरी को टू विन वर्ल्ड्स फर्स्ट अनडिस्प्यूटेड हैवी वेट चैंपियनशिप इन 25 ईयर्स। ये सऊदी अरेबिया में जैसे मैंने आपको बताया ये हो रहे थे। फ्यूरी पहले तो लग रहा था कि बड़े जबरदस्त अटैक्स कर रहा है उसिक के ऊपर, लेकिन फिर उसिक ने डोमिनेट किया और ये फ्यूरी की फर्स्ट डिफीट है इन हिज 36 मैच करियर, फर्स्ट डिफीट है ये उसिक जो है वो। सो एज अ रिजल्ट उसिक ज्वाइंस नाउ द लाइक्स ऑफ मोहम्मद अली जो लुई एंड माइक टाइसन टू बी द अनडिस्प्यूटेड हैवी वेट चैंपियन। दिस हैज हैपन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस बॉक्सिंग रिकग्नाइज फोर मेजर बेल्ट्स इन 2000। ये इनके बीच में एक रीमैच जो है वो हो सकता है अक्टूबर के अंदर इसी साल में, और इस मैच को देखने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे। इसके अंदर रोनाल्डो, नेमर, एंथनी जोशुआ और भी बहुत से लोग थे। अच्छा, ये मैच जो था ये तो थ्रिलिंग था ही था, लेकिन लोगों की नजरें रोनाल्डो के ऊपर भी रही, जिसने के $4,000 गुची आउटफिट पहना हुआ था, लेकिन इससे भी ज्यादा $1.5 million की फ्रैंक मुलर वॉच पहनी हुई थी रोनाल्डो ने, जिसके के ऊपर 424 व्हाइट डायमंड्स लगे हुए थे। इससे पहले भी जो है रोनाल्डो को देखा गया बड़ी एक्सपेंसिव वॉचेस पहनेंगे। इससे पहले एक इवेंट के ऊपर $2 million की जेकब एंड को ट्विन टर्बो फ्यूरियस जो वॉच है वो पहने हुए इसको देखा गया था। तो लग रहा है अपना पैर अपना पैर जो है सही जगह पर इस्तेमाल कर रहा है ये है रोनाल्डो। कोई बात नहीं है रोनाल्डो, हमारे पास मजिद भाई हैं, मजिद भाई कहते हैं चाइना से मैं तुम्हें बनवा दूंगा। एग्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक है, जेकब एंड को ट्विन टर्बो फ्यूरियस आप मुझे बनवा के देंगे, ठीक है जी। ये है अच्छा जनाब, एंड अब हम स्पेशल रिपोर्ट एक आपके लिए शुरू करने लगे हैं, और वो स्पेशल रिपोर्ट है इब्राहिम रईसी साहब का। आज जो डेथ हुआ है उसके साथ साथ जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुलिया साहब, उनकी जो आज हेलीकॉप्टर के अंदर क्रैश हुआ है, ये एक स्पेशल रिपोर्ट है जो कि हम आपको पूरी की पूरी इसकी डिटेल्स बताएंगे कि कैसे मोसाद अपना जो फुटप्रिंट है वो फॉरेन लैंड के अंदर बढ़ाता चला जा रहा है। आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रही है कनाडा की, यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया और बहुत से कंट्रीज जो हैं, इवन पाकिस्तान तो बेचारा बोलता ही रहता है हर वक्त, वो कहते हैं कि भाई जैसे कि रॉ जो है अपना फुटप्रिंट जो है बढ़ाता जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि रॉ एग्जैक्टली जो है मोसाद को फॉलो कर रहा है। तो मोसाद का ये जो फुटप्रिंट है ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे आगे चलते हैं, उसके ऊपर आज हमारे पास एक स्पेशल रिपोर्ट है। आपको पता ही है कि ये आज जितनी जगह पे भी आप देखेंगे सबसे बड़ी आज जो एक्स के ऊपर जो ट्रेंड भी है वो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जो डेथ हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर हुई है, जिसके के बारे में कहा गया जी कि बहुत ज्यादा फॉग थी और जो तैयारा बड़ा पुराना था, ये माउंटेनियस ट्रेन थी तो इसलिए वहां पे हुई है। इस वक्त तो जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनाए, उन्होंने फाइव डेज का मॉर्निंग अनाउंस किया है, और इमीडिएटली उन्होंने असाइन किया है वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबर, जिनकी की उम्र 68 ईयर्स है, टू रिज्यूम इंटरिम ड्यूटीज, क्योंकि इलेक्शंस यहां पे 50 डेज में होने वाले हैं। हुआ ऐसे था कि रईसी साहब जो थे वो अजरबैजान के प्रेसिडेंट इलहम अलीयेव के साथ मिलने के लिए गए थे ऑन देयर कॉमन बॉर्डर, क्योंकि एक डैम को जो है उसका इनॉग्यूरेशन था, और इनके साथ इनके फॉरेन मिनिस्टर अब्दुलिया साहब भी थे। और जिस वक्त ये वापस अब आ रहे थे तो इनका ये जो हेलीकॉप्टर था ये क्रैश कर गया था तहरान के अंदर। बहरहाल आज के दिन एटलीस्ट जो है बिजनेस एज यूजुअल देखा गया था, और बच्चे जो थे वो स्कूल में गए हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी प्रेजेंस जो है यूनिफॉर्म्ड और प्लेन क्लोथ सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उसकी देखी गई जो मेन सिटीज थे ईरान के उसके अंदर। और रईसी साहब जो हैं उनको ज्यादा रीजन के अंदर पसंद नहीं किया जाता था, उनको बड़ा एक हार्ड लाइनर समझा जाता था, लेकिन आपको पता ही है पिछले दिनों में रईसी साहब जो हैं पाकिस्तान में आए हुए थे, और पाकिस्तान में उनकी मुलाकातें जो हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई थी, और इन दोनों ने बात की थी कि हमको अपना पाइपलाइन जो है उस मंसूबे के ऊपर जो है काम करना चाहिए, और पाकिस्तान ने कहा था कि हम नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं और इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल बाकी रीजन के अंदर इनको हार्ड लाइनर कहते थे, और वो कहते थे जी कि ये रईसी साहब जो है ये प्रोटेजे हैं खमेनी साहब के, और इनकी वजह से जो है ईरान के ताल्लुकात कहते थे लोग के अलेजली के बड़े खराब हो गए हैं वेस्ट के साथ, क्योंकि ईरान जो है उन्होंने एनरिच यूरेनियम जो था वो करना शुरू कर दिया था, जिसके बारे में वेस्ट कहता था कि वेपन्स ग्रेड लेवल के ये बॉम्ब्स जो हैं वो बना सकते हैं। इसके अलावा ईरान से इसलिए भी वेस्ट जो था वो नाराज था क्योंकि ये अलेजली बॉम्ब कैरिंग ड्रोन्स जो हैं रशिया को दे रहे थे इन वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। इनकी गवर्नमेंट जो है उनमें उसमें आपको पता ही है कि काफी जब से आई थी प्रोटेस्ट चलते थे, क्योंकि वो कहते थे कि इकोनॉमी ठीक से नहीं चल रही है, वुमेन को राइट्स नहीं है। आपको पता ही है कि महसा अमीनी जो है वो जो एक कुर्द लड़की थी उसके मरने के बाद काफी चीजें जो थी वो वहां पे खराब हो गई थी, क्योंकि उसने सिर पे दुपट्टा नहीं पहना था और उसको पकड़ के पुलिस ले गई थी, और फिर उसकी वहां पे जेल में डेथ हो गई थी, जिसके बारे में कहा गया था कि पुलिस एक्सेसेस की वजह से इसकी डेथ हुई है। बहरहाल सच क्या है लोगों को नहीं पता था। तो अब बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में वो कह रहे हैं जी कि ये फिर से लगता है कि ये सारा कुछ इसराइल ने कराया है। हालांकि इसराइल ने आज कहा है कि हमारा इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो इसराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद है उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केपेबिलिटी है टू स्ट्राइक इनसाइड ईरान। 2020 के अंदर इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरे ज़ादे जो है उनको भी इन्होंने एक सिमिलर जो है ऑपरेशन के अंदर मारा था, जिस वक्त वो एक गाड़ी अपनी ड्राइव करके जो है वो जा रहे थे। एक रोबोटिकली ऑपरेटेड मशीन गन थी जिसको के लगाया गया था एक ट्रक के ऊपर जो कि रोड साइड पे पार्क था। जो है इसराइल ने ना तो उस वक्त भी कहा था कि हम इन्वॉल्व हैं फखरी ज़ादे के डेथ में, ना तो उसने कोई डिनाई किया था कि हमारा इन्वॉल्वमेंट है। ये सारा ऑपरेशन जो था इंतहाई सोफिस्टिकेटेड था। एक स्नाइपर जो था वो एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे बैठा हुआ था थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, और वो ये कंट्रोल कर रहा था मशीन गन को और कंप्यूटर स्क्रीन। इन 2021 की जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने इजरायली सोर्सेज से निकलवाने की कोशिश की है, जिसके के ऊपर उन्होंने बताया था न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि इजरायल जो थी उसने एक स्पेशल मॉडल जो है वो लिया था बेल्जियन मेड FN मैग मशीन गन, जिसको के अटैच किया था कि एक एडवांस्ड रोबोटिक ऑपरेटर से, और वो जो मशीन गन रोबोट और कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज जो थे उनका वेट तकरीबन एक टन के करीब था। इसलिए ये सारे का सारा इक्विपमेंट जो है एक साथ मशीन की सूरत में ईरान में स्मगल नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा गया था और बहुत सीक्रेटली इसको ईरान के अंदर स्मगल करके और फिर ईरान में इसको असेंबल किया गया था। ये जो रोबोट था इसको बिल्ड किया था इन जमियात पिकअप बेड के अंदर, और कैमरे जो थे वो हर डायरेक्शन से उसको कवर कर रहे थे, जो कि बताते थे उस आदमी को या उस चीज को कि जो इसको ऑपरेट कर रही थी कि कैसे करना है। ये जो ट्रक था ये पैक था एक्सप्लोजिव से और इसने जाके ब्लो किया था गाड़ी के अंदर, फिर इसको जो बैठे हुए थे साइंटिस्ट उसको मारा गया था। ये सारी की सारी चीज जो थी AI प्रोग्राम थी, इसमें कोई भी आदमी जो था इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ एक आदमी जो कंप्यूटर पे बैठा था वो सारी चीज जो थी इसको मॉनिटर कर रहा था। स्कॉलर जो है इरेनियन आरिश अजीजी, उन्होंने अपने जो अटलांटिक मंथली ब्लॉक है उसके अंदर लिखा है जी कि मोसाद के एजेंट्स तो खुले आम यहां पे ईरान में फिर रहे हैं, इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं और इंटरोगेट कर रहे हैं कि इरेनियन सॉइल के ऊपर क्या कुछ चल रहा है। सिंस 2004 न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि इसराइल से जब इन्होंने पूछा कि भई आप जो है ये क्या ईरान के अंदर कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी कि कुछ लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ एनोनिमिटी हमसे बात की है। तो इसराइल की गवर्नमेंट ने अलजली मोसाद को कहा जी कि ईरान कैसे न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, उस सारे की इन्फॉर्मेशन लाओ और इनको रोको कि ये किसी तरह से भी जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सकें। इसीलिए इसराइली अलजली they have been carrying out campaigns of sabotage and cyber attacks on Iran's nuclear fuel enrichment facilities. वो कहते हैं जी कि बड़े methodical तरीके से ये मोसाद के बंदे जो हैं इनके experts को और इनके scientists को उठाते हैं जो कि ईरान के nuclear weapons program के अंदर involved हैं। Since 2007 मोसाद के agents ने 5 top Iranian nuclear scientists को मारा है और एक जो था उसको बड़ा सीरियसली जख्मी किया गया था, और ये तमाम के तमाम न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो थे ये डायरेक्टली काम करते थे अंडर फखरीज़ादे। इसराइल जो है उसने इस सारी चीज के लिए हमेशा डिनाई किया है, उन्होंने कहा जी कि हम जो है इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है। आज का भी ये जो प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया गया है, इसमें एक्सपर्ट्स का कहना है जी कि दिस इज कॉल्ड शॉट आउट ऑफ स्काई बाय स्पेस लेजर। स्पेस लेजर टेक्नोलॉजी जो है इसमें शॉट आउट ऑफ स्काई जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाता है, जिससे कि इसको मॉनिटर करके एग्जैक्टली उसी चीज को हिट किया जाता है जिसको कि ये करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो एक ज्यूइश साइंटिस्ट हैं बेंजामिन रुबिनस्टीन, उन्होंने भी आज अपने एक्स के ऊपर लिखा है कि ज़ायनिस्ट सैबोटेज जो है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता और इसके ऊपर एक फुल इन्वेस्टिगेशन बिठाने की जरूरत है। एक और एक्सपर्ट है फुआद इजादी, उनका भी कहना है जी कि ये इनका अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और इशू तो ये है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं ये अज़रबैजान से ऑपरेट करते हैं, ज़ायनिस्ट और मोसाद वाले वहां पे मौजूद हैं। हम अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात तो चाहते हैं लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारी टेरिटोरी को वहां से टारगेट किया जाए। असल में ये बात सारी शुरू कहां से हुई थी? ये बात शुरू हुई थी 1972 में, जिस वक्त जो है तकरीबन 11 इजरायली जो कि गए हुए थे म्यूनिक ओलंपिक्स के अंदर खेलने के लिए, वहां पे जो है इनको मारा गया था। और उसी वक्त से कहते हैं कि इसराइल की जो गवर्नमेंट थी उसने मोसाद को कहा था कि फॉरेन लैंड में जाके उन तमाम लोगों को एलिमिनेट करो जो कि हमारे लिए खतरा हैं। तो इसलिए इसराइल ने ये सारे का सारा जो था ये उसी वक्त से प्लान करना शुरू किया था और उसने डिप्लॉय करना शुरू किया था इसराइल ने सीक्रेट ऑपरेटिव्स टू असैसिनेट इट्स एनिमीज, और इसका नाम उन्होंने दिया था ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड, यानी कि खुदा का गुस्सा। और उन्होंने कहा था कि इसके अंडर हम हंट डाउन करेंगे हर वो दुश्मन इसराइल का जो हमारे खिलाफ है, उसको हम वहां से सफाया उसका करेंगे। सम एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैसे तो ऐसा लगता नहीं है कि जो है वो इसराइल का हाथ हो सकता है प्रेसिडेंट रईसी की डेथ में, लेकिन अगर वो उन्होंने ऐसा किया तो ये फिर डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर होएगा और ये प्रोवोक करेगा सिवियर रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरान। इसराइल की जो स्ट्रेटेजिक फोकस है वो कहते हैं जी कि इस वक्त तक ईरान की मिलिटरी और न्यूक्लियर टारगेट्स के ऊपर है, लेकिन हाई फ्लाइंग पॉलिटिकल असैसिनेशंस जो हैं वो अभी तक इन्होंने नहीं सोचा है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि हमको जो है जरा कॉन्स्पिरेसी की इसमें से बू आती है, लेकिन कुछ सच भी हो सकता है। ये डेडली अटैक्स जो हैं ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट के ऊपर किए गए थे, इनके बारे में वो कहते हैं जी कि ये जो इसराइल है ये डायरेक्टली काम करता है एक ईरानियन डिसिडेंट ग्रुप है उसके साथ, जिसको कि वो फाइनेंस करते हैं, ट्रेन करते हैं और फिर जो आर्म करते हैं। तो ये सारे जो हैं ये कहते हैं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन अब कहां से आई है? ये इन्फॉर्मेशन जी आज दी है एनबीसी न्यूज ने। एनबीसी न्यूज कहती है जी कि हमने कुछ यूएस ऑफिशियल से बात की है और हमने कहा जी कि कौन इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है और किसको इसराइल जो है वो ईरान के अंदर ही हायर कर सकता है। वो कहते हैं जी कि इन्होंने ईरान के अंदर ही हायर किए हुए हैं ये जो डिसिडेंट ग्रुप है जिसको कि कहा जाता है पीपल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान, और ये जो है एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है ईरान के अंदर। वो कहते हैं जी कि ये दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द किलिंग ऑफ सेवरल पीपल अमेरिकन सर्विसमैन कॉन्ट्रैक्टर्स इन द 1970s, और अब ईरान और अब इसराइल इनके साथ बहुत ज्यादा क्लोजली काम कर रहा है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं इनके मारे हैं और लोगों को, इन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट लोगों को मारा है। और वो कहते हैं जी कि इस ग्रुप ने टेक ओवर किया था यूएस एम्बेसी इन तेहरान में और ये जो थे ब्रेक डाउन करना चाहते थे ईरानियन मुल्लास जो थे उनको 1980 में। वो कहते हैं जी ये तमाम के तमाम जो अटैक्स हैं ये बड़े ही एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में किए जाते हैं, मोटरसाइकिल में असेलेंट्स बैठ के आते हैं और वो स्मॉल स्मॉल मैग्नेटिक बॉम्ब्स जो हैं वो किसी भी विक्टिम की गाड़ी के अंदर आराम से फेंक देते हैं, और ना भी अगर फेंकें तो ये AI जो प्रोग्राम चीजें हैं उससे ये एग्जैक्टली उस आदमी को हिट करते हैं जिसको करना चाहते हैं। आसपास अगर कोई बैठा है और अगर हिट होता है तो वो कोलैटरल डैमेज है, लेकिन इनकी इतनी प्रिसीजन हिटिंग होती है कि आसपास का कोई भी बंदा अनहर्ट भी रह सकता है। एनबीसी जो है न्यूज उसके मुताबिक यूएस ऑफिशियल्स जो हैं उनसे इन्होंने जब पूछा कि भाई ये सारा कुछ जो है ये जो हो रहा है, उस वक्त वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा जो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और उनसे पूछा गया कि क्या प्रेसिडेंट ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन को इसराइल की इन तमाम हरकतों के बारे में पता नहीं है और ये जो इन्होंने ईरान के अगेंस्ट किलिंग कैंपेन शुरू की हुई है तो इसके बारे में पता नहीं है। उन्होंने कहा हाँ जी पता तो है, लेकिन अमरीका का एटलीस्ट इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपको पता ही है कि ईरान के अंदर मैसिवली ओबामा के खिलाफ बड़े मोर्चे निकले थे जिस वक्त कुछ साइंटिस्ट जो थे ईरान के अंदर मरने शुरू हुए थे, तो उसी सिलसिले में एनबीसी ने इनके साथ बात की थी। वो कहते हैं जी कि ईरान जो है उसको पता तो है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इन तमाम किलिंग्स के पीछे, इसराइल और पीपल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान, जिनको के शॉर्ट नेम से भी बुलाया जाता है MEK MKO PMI, तो ये सारे हैं। रॉयटर्स की एक और भी रिपोर्ट आ जाइए, रॉयटर्स के मुताबिक ईरान जो है उसने, एंड दिस इज अ रियल ब्रेकिंग न्यूज जो कि हम आपको इस वक्त दे रहे हैं, आपने इससे पहले अभी तक नहीं सुनी होगी, ये बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले कोई घंटा पहले रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है। और उसके मुताबिक उन्होंने, और ये बड़ी हैरत की बात है क्योंकि आपको पता है कि यूएसए की और ईरान तो वो जो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना इट कुत्ते दा वैर है ना, था ये तो सैंक्शंस कितनी लगाई हुई हैं और ये, लेकिन ये जो आज का क्रैश हुआ है प्लेन क्रैश में, रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने आज हेल्प यूएसए से भी मांगी है। मजा भाई दिस इज अ वेरी जो है वो शॉकिंग न्यूज। ये जो है अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उनसे आज रिपोर्टर्स ने पूछा जी कि हमें पता चला है कि ईरान ने आपसे भी हेल्प मांगी है कि ये जो इब्राहिम रईसी साहब को मारा गया और इनका जो ये जो हेलीकॉप्टर गिराया गया है तो इसमें प्रोब आप हमारे साथ करें और मिलकर करें। इसके ऊपर मैथ्यू मिलर साहब ने कहा जी कि हमें बड़ा इस चीज का खेद है, हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन यूएसए जो है कोई भी ईरान की हेल्प नहीं कर सकता है फॉर लॉजिस्टिकल रीजन। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਰਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਜਿਸਟਿਕਲੀ ਹਮ ਆਪਕੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਤੋ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੀ ਲੇਮ ਕਿਸਮ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਇਨਕੀ ਡੈਥ ਕੇ ਉਪਰ ਕਾਫੀ ਅਫਸੋਸ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇ ਆਫ ਮੋਰਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੈਂਗ ਜੀ, ਟਰਕੀ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੈਯਬ ਅਰਦੋਗਾਨ, ਮਲੇਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਕਤਰ ਕੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਤਮੀਮ ਬਿਨ ਹਮਦ ਅਲ ਥਾਨੀ, ਯੂ ਏ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਅਬੂ ਦਾਬੀਜ਼ ਰੂਲਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਿਆਨ, ਯੂ ਏ ਕੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਦੁਬਈ ਕੇ ਰੂਲਰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲ ਮਖਤੂਮ, ਇਰਾਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਾਰਡਨ ਕੇ ਕਿੰਗ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਇਟਲੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਰਜੀਆ ਮੈਲੋਨੀ, ਯਮਨ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਕੇ ਜੋ ਹੈਡਸ ਹੈ ਉਨ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਤਹਿਰਾਨ ਕੋ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕੌਂਸਪਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਬ ਪ੍ਰੋਬ ਇਸ ਪੇ ਬਿਠਾਏਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਤੱਕ ਇਰਾਨ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮਕੋ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਰਾਨ ਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾ ਕੋਈ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰੇ
ਇਰਾਨ ਨੇ ਯੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ
ਖਰਾਬ ਥਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ ਕਹਾ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਇਸਕੇ ਉਪਰ ਤਹਿਕੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਂਗੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏਂਗੇ।
ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਤੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯਾ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕੀ ਜਬ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਸੋ
ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਰੇਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਯੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਹਾਂ ਕੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈ ਵੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾ ਜੋ ਹੈ
ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਿਕਾਲ
ਹਾਂ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਵੋ ਉਨਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਡੈਥਸ ਮੇ ਯੇ ਮੋਸਾਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਔਰ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਐਸੇ ਹੀ ਮੋਸਾਦ ਨੇ ਕੀਆ ਥਾ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਏ ਈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਜਿਸਕੋ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਮੋਸਾਦ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਲੋਗ ਯੂ ਏ ਈ ਮੇ ਆ ਗਏ, ਯੂ ਏ ਈ ਜੈਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਆ ਗਏ ਇਨਹੋਨੇ ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਯੇ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਥੀ ਨਾ ਕਿ ਕੈਸੇ ਯੇ ਇਰਾਨ ਮੇ ਗਏ ਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਲੇ ਕੇ 25 ਬੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੇ ਵੋ ਯੂ ਏ ਈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਥੇ। ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਜੋ ਕੋਈ ਵੋ ਛੋਟਾ ਸਾ ਪਾਰਟ ਲੇਕਰ ਆਤੇ ਥੇ ਵੋ ਦੁਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੇ ਪੁੱਛਤੇ ਥੇ ਯੇ ਕਿਆ ਯੇ ਏਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫਰਮ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫਰਮ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੇਤੇ ਥੇ ਉਨਕਾ ਯੇ ਏਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਯੇ ਹਮ ਲੇਕਰ ਆਏ। ਦੈਨ ਦੇ ਕੇਮ ਟੂ ਅ ਦੁਬਈ ਹੋਟਲ, ਦੇ ਅਸੈਂਬਲਡ ਦਾ ਹੋਲ ਗਨ ਅਗੇਨ, ਇਟ ਵਾਜ਼ AIA managed and monitored ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕਾ ਕਮਰਾ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕੀਆ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋ ਜੋ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਥਾ ਉਸਕੋ ਕੀਆ ਔਰ ਉਸਕੋ ਹਿਟ ਕੀਆ ਔਰ ਵੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਮੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੁਬਹਾ ਕੇ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਠ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਸਕੋ ਮਿਲਨੇ ਆਇਆ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਕਹਾ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਤੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਥੀ ਉਸਕੇ ਸਾਥ, ਹਮਾਰੀ ਤੋ ਮੀਟਿੰਗ ਥੀ ਉਸਕੇ ਸਾਥ, ਤੋ ਹੋਟਲ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਉਨਕਾ ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਰੂਮ ਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਾ ਤੋ ਵੋ ਮਰੇ ਪੜੇ ਥੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਯੂ ਏ ਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਿ ਵੋ ਜੀ 25 ਬੰਦੇ ਯੂਕੇ ਕੇ ਥਰੂ ਆਏ ਥੇ ਔਰ ਯੂਕੇ ਹੀ ਵੋ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ 25 ਕੇ 25। ਹਾਂ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦੇ ਆਪਰੇਟ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦੇ ਆਪਰੇਟ। ਹਾਂਜੀ
ਚਲੀ ਸਭ ਰਿਸਪੋਂਸਿਸ ਪੈਗਾਮਾਤ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਵਾਪਿਸ ਆਏਂਗੇ। 4166201778 ਹਮਾਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ WTOR 770 AM ਯੰਗਸਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ।
ٹرک کا گھومتا پہیہ کینیڈا کی معیشت کی ترقی کا ضامن، آپ کا ٹرک سڑکوں پر راج کرے اور کینیڈا کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ ٹرک مینول یا پھر آٹومیٹک، ٹرک کی بہترین سروس کے لیے کوئک ٹرک لیو تھرو آؤٹ انٹیریو، نو اپوائنٹمنٹ نیڈیڈ، ڈرائیو تھرو فیسلٹی، ون سٹاپ شاپ۔ اب تیسری لوکیشن ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان نیپنی، کوئک ٹرک لیو 5196220660, quicktrucklube.com। 770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو باخبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس، الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشیل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com، لوکل نمبر
6478724900। اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا، ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے۔
او پھر بنے بھی کیوں نہ، کیونکہ بیڈ روم سیٹ، صوفہ سیٹ، میٹریسز، ڈائننگ ٹیبل، ڈیکوریٹو آئٹمز، گل کی جی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج۔
142 کینیڈی روڈ، برامٹن، 9058747471।
आतिशबाजी के नए कानून के तहत ब्रैम्पटन में आतिशबाजी के इस्तेमाल, खरीदारी, खारिज होने वाले मादा, डिस्प्ले या फरोख पर सख्ती से पाबंदी है। इसमें तमाम चमकने वाली रोमन मोमबत्तियां, रॉकेट, ग्राउंड स्पिनर्स, फवारे, उड़ने वाले लालटेन, बम धमाके वगैरह शामिल है। अमल न करने पर आपको 500 से 1 लाख डॉलर तक फाइन हो सकता है। ब्रैम्पटन के रहायशी, नए साल की शाम, कैनेडा डे या दिवाली की आतिशबाजी शहर के ज़ेर क़यादत जगहों पर एंजॉय कर सकते हैं। मज़ीद जानने के लिए विजिट कीजिए brampton.ca/fireworks।
की तुसी अपने घर अते ऑटो इंश्योरेंस दे रिन्यूअल करवाना चाहते हो ते तुसी चंगी कीमत भी तलाश रहे हो ता फिर घबराउण दी लोड नहीं। तुसी जाओ ऑल स्टेट एजेंट एजेंसी दे राजा मुदस्सर कोल। तुसी एक घर ते दो कारा दी इंश्योरेंस करवा के इना तो 1775 डॉलर दी बचत भी कर सकते हो। हुणे संपर्क करो राजा मुदस्सर नू 6472903773 यानी 6472903773।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टेट एजेंट एजेंसी के राजा मुदस्सर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन 1775 डॉलर की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
साडे कोल योजना है जो कि ओंटेरियो नु जोड़ रही है। रोजाना आवाजाही नु घटाउण लई नवीं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार। एह सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल, सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको। ontario.ca/builds ते जाके होर जाणो। इस दी अदायगी ओंटेरियो सरकार वल्लों कीती गई है।
मछली अंडे दूध दही ते सस्ते चावल मिल दे, भले पकौड़िया ताजा मिठाइया गर्म समोसे मिल दे, बटाला सुपर मार्केट।
स्कारपोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपर मार्केट बटाला सुपर मार्केट 200 मार्कम रोड स्कारपोरो, मार्कम रोड ते इंग्लिंटन दा संगम। फोन 416-264-3111।
की तुसी पाकिस्तान, इंडिया, सिंगापुर ते दुबई दी लेटेस्ट ज्वेलरी दी तलाश विच हो तां पायल ज्वेलर तुहाडे लई एक वधिया ऑप्शन हो सकदा है। जिथे तुसी 22 कैरेट गोल्ड नाल बनी ज्वेलरी, डायमंड, ब्राइडल एंड कस्टमर ज्वेलरी दे ले सकदे हो। ता आज ही पहुंचो पायल ज्वेलर्स एट 2720 नॉर्थ पार्क, यूनिट 42, ब्रैम्पटन 9057907879।
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम।
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपके अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट किनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100। कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
کینیڈین امیگریشن کے لاس اور پالیسیز میں مستقل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا کام ماہرانہ طریقے سے تازہ ترین معلومات کے تحت کیا جائے۔ میرا نام یاسمین طیبی ہے اور میں گزشتہ 25 سالوں سے سٹیزن شپ، پی آر رینیولز، اسپاؤزل اسپانسرشپ اور ایجنسی کے پیچیدہ کیسوں کو کامیابی سے کر کے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کر چکی ہوں۔ kanemsolutions.ca پر جا کر ہماری فرم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے آفس میں سرٹیفائڈ اردو ٹو انگلش ترجمے کی بھی سہولیات موجود ہیں۔
گرل ان ہارٹ مسز ساگا میں آرڈر وائے فون عمران بھائی کو کال کریں۔
انتہائی لذیذ بریانی کھانا ہو یا پھر کڑھائی کھانا ہو یا پھر سٹیکس کو انجوائے کرنا ہے تو آپ آرڈر پلیس کیجئے 9054058383۔ گرل ان ہارٹ۔
السلام علیکم، میں شبہات علی فرام میگا منی ایکسچینج۔ ہم تقریباً 18 سال سے منی ٹرانسفر کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پاکستان پیسے بھیجنے ہیں یا منگوانے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارا فون نمبر ہے 9052794754 اور ہمارا ایڈریس ہے 4196 کوترا روڈ مسز۔
اسلم بھائی، میرے اسلم بھائی،
میرے اسلم بھائی، اسلم بھائی آئے ہیں صاحب، ناظرین ہیں سامعین، ویلکم بیک اگین۔ اینڈ 6:35:22 ہماری گھڑیوں میں ہو چکے ہیں۔ اسٹل بیوٹیفل گورجیس 24 ڈگریز ٹیمپریچر، یس یو ہرڈ اٹ رائٹ، 24 ڈگریز ٹیمپریچر، 26 جائے گا، پرواہ نہ کریں آپ۔ اور کل پرسوں روزانہ 26, 27, 28 تک بھی ٹچ کرے گا۔ سب گرینڈ اوپننگ ہوئی اور گرینڈ اوپننگ 11 مئی کو پچھلے دنوں ہم سب پہنچے ہوئے تھے وہاں پر۔ آپ نے ان کا ٹی وی پہ بھی دیکھا کہ پائل جیولرز کی گرینڈ اوپننگ جو لوکیٹڈ ہے 2720 نارتھ پارک ڈرائیو، نارتھ پارک اینڈ ایئرپورٹ روڈ کے کارنر پر۔ اسلم بھائی یہاں کے ہوتے ہیں روئے روا، اور اسلم بھائی نے اس دن پرامس کیا تھا ہم سے کہ بھائی ہم لوگوں کے نام جو ڈراز میں آ رہے ہیں ان لوگوں کے نام جو ہے ہم ڈراز میں ڈالیں گے، اور ان کی اسی دن رات کو 8 بجے انہوں نے نکال لیے تھے۔ آج اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے اس کی، تو میں نے اسلم بھائی کو دعوت دی کہ آپ آئیے اور آ کے اپنا اناؤنسمنٹ خود کریں۔ اسلم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟
جی وعلیکم السلام بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں
الحمدللہ۔ فرمائیے سر، اس دن کئی لوگ آئے وہاں پر، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، مگر اس میں سے کچھ لکی لوگ بھی تھے۔
جی ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ پہلے 10 ڈائمنڈ کے کوکے نکالے تھے، 3 ڈائمنڈ کی رنگز نکالی تھیں اور 1 انڈیا اور پاکستان کی ریٹرن ٹکٹ نکالی تھی۔
صحیح،
اس میں سے 10 لکی ونر جو ہیں میں ان کے نام اناؤنس کر دیتا ہوں، جن میں سے کچھ لے گئے ہیں اور کچھ نے اپنے کوکے ڈائمنڈ کے لے کے جانے ہیں ہمارے سے۔
صحیح،
پہلے ہیں جی جسوندر سنگھ، پھر
جسوندر سنگھ، صحیح ہے صاحب، ہاں جی،
پھر زہرا
کا، اچھا کوئی اگلا نام نہیں ہے، چلو صحیح ہے، اوکے،
پھر ہے بسنتی بہن،
بسنتی بہن، اوکے سر،
پھر ہے جمی گھمری،
جمی گھمری، گھمری جی، ہاں جی،
پھر ہے کرن جیت سدھو،
کرن جیت سدھو، صحیح ہے سر، ہو گیا،
پھر ہے جتندر سٹائل ہب والے،
جتندر
سٹائل ہب والے،
سٹائل ہب والے، اچھا اچھا سٹائل ہب والے، اوکے جی،
پھر ہے مانی ٹھاکر،
مانی ٹھاکر بھی ہو گئی جی، مانی ٹھاکر جی صاحب،
پھر ہے زبیدہ عاشق،
زبیدہ عاشق، ہاں جی،
سیکنڈ لاسٹ ہے دویندر چاہال،
دویندر چاہال،
جو آخر میں ہے ڈائمنڈ نوز پن کے ونر، ان کا نام تھا نیودیپ کور،
نیودیپ کور، ये सारे जो है इन्होंने क्या जीता है?
इन्होंने डायमंड की नोज पिन जीती है,
डायमंड
रियल डायमंड की नोज पिन।
हाँ जी, डायमंड नोज पिन। ओके,
और अब मैं आपको बताता चलूं कि जो तीन लोग जिन्होंने डायमंड की रिंग विन की है उनमें से पहला नाम है साजिदा जैदी।
डायमंड रिंग साजिदा
जैदी।
ओके,
उसके बाद है वर्षा पधेर। आखिर में है गेविन
आखिर में है। ओके
जी, और जो सबसे बड़े लकी विनर है जो कि पाकिस्तान की रिटर्न टिकट जीती गई है उनका नाम है आफताब आलम।
पाकिस्तान की रिटर्न टिकट, वाओ, रिटर्न टिकट आफताब आलम जी, बल्ले बल्ले
जी।
हाँ जी, और
तो इनमें से आप देखें कि डायमंड की रिंग सारी चली गई हैं, ले गए हैं, और जो डायमंड की नोज पिन है उनमें से कुछ दो तीन लोग हैं जिन्होंने अभी पिक करनी है, बाकी सबको हमने डिलीवर कर दी है।
क्या बात है जी आपकी, बहुत सारे ये जो लकी विनर्स थे उनका नाम मैंने लिख भी लिया है, हम दोबारा से अनाउंस भी कर देंगे, और ज्यादातर लोगों ने पिक भी कर लिए हैं वहां से। सर जी आपका बेइंतहा शुक्रिया आपका।
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने खिदमत का मौका दिया, और मैं बस ये कहना चाहूंगा कि पायल ज्वेलर्स पे जितने भी लिसनर हैं एक दफा आए और अपनी मनपसंद ज्वेलरी हमारे से लेकर जाएं।
जरूर जरूर पहुंचे। पायल ज्वेलर के बारे में बता दूं मैं, कोई ये कोई स्टोर नया है मगर यहाँ के लोग बहुत पुराने हैं, दे हैव बीन दिस बिजनेस फॉर मैनी 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 ईयर्स, बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं, एवरीबडी नोज देम, और अब इनका अपना है डायमंड का स्टोर पायल ज्वेलर्स के नाम से, और पायल ज्वेलर जो है ये आपको मिलेगा 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव इन ब्रैम्पटन, राइट एट द कॉर्नर ऑफ नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट रोड 905। यूनिट की जरूरत ही नहीं, सामने आइए, इतना बड़ा बड़ा पायल ज्वेलर लिखा हुआ है। 905-790-7879 इनका फोन नंबर है, साहब पहुंच जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका
दुकान पे, बहुत शुक्रिया
जी। जनाब हमने पायल ज्वेलर्स से आपकी बातचीत करवा दी। अगेन डायमंड रिंग के विनर्स जो थे जसविंदर सिंह, जोरा, बसंत बहन, जिमी गोरी, इसके साथ साथ कंजीत सिद्धू, सतिंदर स्टाइल हवाले, मनी ठाकुर, जुबैदा आशिक, इसके साथ साथ दविंदर चाहल एंड नवदीप कौर, और जो डायमंड रिंग जो जिन्होंने जीती है उनका नाम है साजिदा जैदी, वर्षा पथिंदर, और जो इसके साथ गेविन ने भी जीती है, साहब उनको भूलना चाहिए, और पाकिस्तान रिटर्न टिकट जो है उन्होंने दो टिकट रखी थी, एक पाकिस्तान रिटर्न टिकट या इंडियन रिटर्न टिकट, तो जो भी जीते पाकिस्तान इंडिया में से तो वो तो इसमें पाकिस्तान रिटर्न टिकट जो है आफताब आलम साहब ने ये टिकट जीती है, आफताब आलम फ्रॉम पाकिस्तान रिटर्न टिकट उन्होंने खरीदी है, पाकिस्तान जाओ जी अयाश करके आओ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एंड सब इसी तरह प्रोग्राम को लेकर चलते रहेंगे, एंड कुछ ही देर बाद मेरे साथ और लोग भी शामिल हो जाएंगे इधर, बस इसी हंसते खेलते बोलते हमने आपके साथ टाइम गुजारना है, साढ़े आठ बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। चलिए साहब एक खूबसूरत गीत की तरफ ले चलता हूं, उसके फौरन बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर है। अहमद रुश्दी साहब की आवाज, फिल्म है दिल मेरा धड़कन तेरी। है ये कैसे हो सकता है यार, दिल मेरा और धड़कन तेरी, ये तो फिर डॉक्टर आमिर से पूछूंगा मैं, डॉक्टर आमिर को आयन ने आसिफ आमिर से पूछूंगा मैं कि भाई ये ऐसा पॉसिबल है कि दिल मेरा और धड़कन तेरी, कुछ मुझे इस पे से कुछ दाल में काला लग रहा है कुछ। एनीवे ये गीत सुनिए, उसके फौरी बाद इस पर जरूर डिस्कस करेंगे हम। 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है।
किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो हो कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। देखो ये फजाएं ये रुत ये नजारे, छोटी सी ये वादी भी कितनी हसी है। कैसे जाने तू मैं तुम्हें ओ जाने वाले, मेरा दिल मेरे ही बस में नहीं है। आएगा ना लौट के समा ये सुहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो हाय हाय कबूल कर लो। को पता है तुम्हारे इस प्यार में, खुद को मिटाया तो मैंने तुम्हें पाया। अपने ही साए से छुप के हमेशा मैंने तुम्हें नगमा बपाओं का सुनाया। तुम हुए दूर तो हंसेगा जमाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो हो कबूल कर लो। आँखों में हया के गुलाबी से ये गोरे, धीरे धीरे अब तो सिमटने लगे हैं। अंगड़ाई लेते ये जल दे तुम्हारे, मेरी नजरों से लिपटने लगे हैं। अब कोई और न चलेगा बहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो हो कबूल कर लो।
खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगु, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 299-7466।
हेलो, कहाँ हो? निकले नहीं अभी तक?
यार बहुत काम है।
कितना टाइम लगेगा?
पता नहीं, घंटा और लगेगा।
ओहो ठीक है, बैठे रहो ऑफिस में।
हाँ काम खत्म होगा तभी निकलूंगा।
अभी बताती हूँ, ये लो।
तो भी ना यार, क्योंकि गाड़ी देसी बासमती राइस का खिलता महकता लंबा दाना हर निवाले को दे एक खास लज्जत। देसी बासमती, सीधी बात, देसी स्वाद।
गाड़ी, घर या कमर्शियल, जैसा कि बिजनेस, ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से रब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दे, मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस, मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट के लिए वकार अजीम, 416-302-2522, 302-2522।
बोले चूड़िया, बोले कंगना।
بھائی خواتین کو تو زیورات بہت اچھے لگتے ہیں. چوڑیاں لے لو, کڑے لے لو, چینز لے لو, سٹون جیولرز, روبی جیولرز کا نام یاد رکھنا. شادی بیاہ ہے یا عام کوئی چھوٹا برتھ ڈے پارٹی اپ یا کسی کو گفٹ دینے کے لیے, یو مسٹ وزٹ روبی جیولرز. گولڈ کا ٹریڈ ہے یا پھر ریپیئر ہے, روبی جیولرز 7086 ایئرپورٹ روڈ 9056776888. اکرم بھائی یا اسلم بھائی سے بات کیجیے گا.
اسپیئر اینڈ مکھے مینس ویئر کلوتھنگ, فٹ کوالٹی ویلیو ایک ہی جگہ پر. کینیڈا میں دا اونلی ساؤتھ ایشین اونڈ کسٹم سوٹنگ اینڈ شرٹنگ کمپنی. بربری, ہیری روزن, ہوگو باس جیسی کوالٹی آزمائش شرط ہے. 100% اٹالین ووڈ سے بنے سوٹس صرف 249.99 میں. اور بھی زبردست ڈیلز کے لیے وزٹ کریں اسپیئر اینڈ مکھے مینس ویئر, 1535 میرسا ڈرائیو, یونٹ 1920, مسساگا. کال 9056703388, www.spearandmckay.com.
اکال ٹرک اینڈ لوم,
تاڈے ٹرک بادشاہ دی کوالٹی سروس, ریپیئر, آئل چینج, واش تے مینٹیننس.
ایک اور خوشخبری,
نارتھ امریکن, چائنیز تے کورین نویں تے استعمال شدہ ٹائر وتھ فل وارنٹی.
اکال ٹرک اینڈ لوم 1776 میئر سائڈ ڈرائیو 905-565-1100.
سکس لوکیشن ٹو سرو ان جی ٹی اے, نارتھ یارک, برامپٹن, ایٹوبیکو یا ہو مسساگا. فریش اور مزیدار پیزاز کی ورائٹی, یا آرڈر کرنا ہو اپنا من پسند کسٹم میڈ پیزا. اس کے علاوہ پنزا روٹی, پوٹیٹو ویجز, فرائی, سیلڈ, گارلک بریڈ یا کھانے ہو گارلک فنگرز. ٹو آرڈر اور ٹیک آؤٹ کال 905-789-8838.
جی صاحب, ناظرین, ویلکم بیک اگین. 6:50 اور 30 سیکنڈ ہماری گھڑی میں ہو چکے ہیں, اور صاحب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گئے جا کے ٹرکی جا کے آ گیا نا, تو ایک دم ٹرکی, وہ کیا ہو گیا جی, ہمارے سے کوئی بات نہ کری اب, ہاں میں ٹرکی ریٹرن ہو جائے پاکستان میں. نا عامر, سب سے پہلے تو عامر, السلام علیکم.
السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں ناظرین کو بھی السلام علیکم.
اچھا میں دیکھ رہا ہوں, میری سائڈ سے نظر آ رہا ہے مجھے, ابھی تک میں دیکھا نہیں ہے.
میں تو بالکل فرنٹ,
میں تو آپ کو, میں
بالکل فرنٹ والی,
کوئی تیسرا بندہ بھی بیٹھا ہے
میں بالکل فرنٹ ونڈ شیلڈ پہ ہوں مجھے, اور بہت مہنگی ہے فرنٹ ونڈ شیلڈ, میں نے زیادہ پتھر کھینچ کے مارا.
کوئی تیسرا بندہ بیٹھا
ہے ماجد بھائی؟
یار ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑی مشکل سے میں نے یہاں سے ہٹایا تھا.
فیوی کال
مینس کے بہت سا گلو ہوتا ہے وہ,
فیوی
کال. اچھا دیکھیں میری بات سنیں, مجھے جو ہے نا کل پرسوں سے اگر میرے پاس بھی موساد جیسی ٹیکنالوجی آ گئی نا اے آئی کی, مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے دور سے بیٹھ کے تمہیں اور مرچل بھائی کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور ٹھا ٹھا میری طرف سے جو ہے نا وہ تم لوگوں کو ٹیزرز آ کے پڑھیں گے.
ہم لوگ ہیں, ہم لوگ ہیں پاکستانی, وہ ٹھاٹا ہم پہ استعمال نہیں ہوتا.
نہیں نہیں,
ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے پارٹی والے جو
ٹھاٹا نکالتے,
ہم تو ٹھاٹا سے پٹاخا بجائے
تو ٹھاٹا ایسی مستی میں ہو جاتا. کھانا صبح کا ناشتہ نہیں ہوتا تھا ٹھاٹا, اچھا اب ناشتہ شروع.
نہیں یہ لوگ ٹھاٹا کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں تھا تھا
چلا گیا
چلا گیا. ان کو سمجھاؤ یار.
لیکن ماجد بھائی تمام اس کے باوجود میں ایک کریڈٹ تو ان کو دینا چاہتا ہوں. اب اتنی انہوں نے رپورٹ سنائی اس بندے کے اوپر, پتہ نہیں 1000 کلومیٹر دور بندہ بیٹھا, اس نے یہی سے آپریٹ کیا. اب وہ جو انجینئر تھا, وہ جو سائنٹسٹ تھا, اس کی انہوں نے تصویر دکھائی ہوگی اس کو کمپیوٹر کو, ان کو پتا ہے آپ کے کمپیوٹر کی تصویر دکھا کے بھی نہیں مار سکتے.
ہاں اس لیے کہ کیونکہ تم لوگوں نے جو صبح میں پر ملیشیا ڈالا ہے تو لوگوں نے وہ دکھانی ہے. وہ تمہارا ڈرون جو ہے جب مجھے گھر ڈھونڈنے آئے گا تو میں تو منہ دھو کے بیٹھی ہوں گی, ڈرون مجھے پہچان ہی نہیں سکے گا.
لوگ گواہ اس چیز کے, پہلے تو میں تھا, مجھے تو لوگ مذاق میں اڑا لیتے ہیں, لیکن ایک ہماری اور بہن کہتی ہے میں بھی تصدیق کر سکتی ہوں کہ ڈرون نہیں مار سکتا, شازیہ جی کو نہیں مار
سکتا. چلے گا تو مجھے مارے گا نا, وہ تو تم لوگوں نے ڈرون, مجھے میری ڈرون کو میری شکل دکھانی ہے, میک اپ والی اور آفس والی جیسے ہی. ہاں اب آفس میں تو تم لوگوں کے سامنے ہی مجھے مار سکتے ہیں, کیسے ماریں گے तुम लोगों ने कार्रवाई कार्रवाई डालनी है, साढ़े आठ के बाद कार्रवाई डालनी है मेरे घर पे, घर पे मेरे बूथी धोई होती है, अब वो बेचारा तुम्हारा ड्रोन फिर के पागल होएगा और तुम्हारी टिंड पे आगे वापस पड़ेगा जोर से ठा,
क्योंकि वो वही मिसाल है ना भाई,
बता नहीं सकेगा।
अगर मर्द जो है वो मुंह धो रहा है तो उसका मतलब उसने बाहर जाना है, और अगर औरत मुंह धो रही है
समझ घर में रहना है, यस वो घर में बैठेगी, यस दैट्स राइट,
वेलकम टू द जंगल।
नहीं हम कहते हैं बैक टू द ग्राइंड, यस बैक टू द ग्राइंड।
अच्छा
यस
ये ग्राइंड आपके लिए,
यस एग्जैक्टली। कितना प्रभाव मुझे आज आपने मुझे खुद कहा, कितने बेशरम लोग हैं, अर्फा भाई ने कितना कुछ मुझे सुनाया है,
बोलते
जो उमरा यहाज करके उसके सामने तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना,
एकदम
मिलता है
उससे। उसके बाद आमिर कह रहे हैं हमारा तो खाना नहीं खत्म हो रहा था, यानी जिस वक्त से मैं यूं बेइज्जतियां हो रही हैं।
नहीं मैनाज ने जो चावल और आटा लिया था पूरे महीने का, वो दो महीने चला,
देख लो
यकीन करें इतना डिफरेंस आ गया।
मैं तो कह रहा हूँ मैं घर में ग्रोसरी का बिल नहीं गिर गया,
सब तो यही था। बनास कह रही हो क्या रहा यार, इस वक्त बजट तो ऐसा जबरदस्त चल रहा है। मैंने कहा भाई बस यही है, 20 तारीख तक इसके बाद पूरा हो
जाएगा। देखो जी ब्रिटेस का चल नहीं रहा था, होटल नहीं चल रहा था, रेस्टोरेंट का रेस्टोरेंट चल नहीं रहा था उनका, अब चलना शुरू होगा जब मैं आई हूँ।
टोरंटो सब चलेगा,
हाँ सब चलेगा,
यहाँ का आप देखो
बिजनेस नीचे था,
वो इन्फ्लेशन गिर गया, इन्फ्लेशन गिर गया, कम से कम देखिए इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि
ग्रोसरियां खरीदना शुरू कर देंगे,
डिमांड आ गई,
बिल्कुल
डिमांड आ गई,
बिल्कुल
डिमांड की वजह से लोग खरीदेंगे,
ग्रोसरियों की प्राइस ऊपर।
मैं कहता हूँ कि आप कहाँ गई थी,
सुनिए
तो वो भी इनको 10 दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते,
ना ना ना
आप देख लें कभी ये 21 दिन का 20 दिन का वीजा अप्लाई कर रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा,
वो कहेंगे हमारी भी हालात खराब कर दोगे तुम,
इससे ज्यादा कहते हैं भाई ये आइटम अपने पास ही रखो।
और उनकी तो पागलों बहुत टूरिज्म चली है मेरी वजह से, इतना वहां पे खाना बिका है, इतना खाना बिका है, उनकी तो बहुत
और भी मसाइल होते हैं,
दूसरे मसाइल
चाहते हैं कि यहाँ सब उमरा करने आते हैं, ठीक है ना, पार्टी करने बिगड़ जाओ आसपास की दुनिया वहां चले जाओ, वो लोग वहां पार्टी।
अच्छा इन्होंने एक वो भेजी वहां से वीडियो,
यस
लोग उमरे के लिए,
हाँ
भाई हार्डली अन्य लोग थे वहां पर,
खाली था, भाग गए थे सब। इन्होंने वीडियो भेजी उसमें एक रो में, अच्छा आपका बहुत शुक्रिया आपने सबके लिए दुआ की, डेली अप्रिशिएट, लेकिन बेइज्जती देखें फिर भी करनी है, ये गई वहां सिर्फ वो चार पांच लोग रह गए जिनको बस जो ना अल्लाह की तरफ से था कि भाई कर लो, अभी मौका है उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा, बाकी सब भाग गए
भाई। भाई मैं कह रहा हूँ कि उससे एक दिन पहले मेरी सिस्टर वहां थी, झूठ बोल रहा
हूँ,
उसका एडिट करना मेरा, झूठ बोल रहा हूँ, वो जो है वो गई वहां पर, उन्होंने देखा कि खचा खच भरा हुआ है। दूसरे दिन उन्होंने तस्वीर भेजी
खाली,
जो
शाहजहां जी ने
वीडियो भेजी, उसमें तो मुश्किल से 100-150 आदमी
होगा, ज्यादा नहीं थे।
अच्छा आप लोग तो ये कह रहे हो ना कि तुम्हारे जाने से सारे चले गए, मेरी कजन तो इतनी बैड है, मैंने कहा मैं तुम लोगों के लिए भी दुआएं कर, तुम लोग तो अच्छे चलो, तुम लोगों ने कोई थोड़ा सा ना रिकग्नाइज किया कि चलो जिसने जो दुआ की, मैंने उनको जो काबा के सामने बैठ के वो दुआ का भेजा, कहते हैं ये सारा AI जनरेटेड है, तू उठे नहीं है, इसके पीछे कोई बंदा ही नहीं है,
देखो
देख रहे हो
ना आगे ना पीछे,
हाँ देखो ना आगे ना पीछे, कहते ये कैसे है, ये तो काबा है, काबा के पास तो इतने लोग होते हैं,
हाँ
ये तो AI जनरेटेड हमें पीछे भेज देती है,
नहीं आपको उनको हकीकत बता देनी चाहिए, मैं आ गई हूँ इधर,
हाँ
वुजू करके,
हाँ नहीं टाइसन फ्यूरी की वो देखने चली गई हूँ
मैं वुजू करके पहुंच गई, ये हुआ था,
उन्होंने कहा कि वल्लाही सजा यही दे दे, तूने यही दे दिया हमें सजा, हम उनको क्या बताएं, हम तो रोज भुगतते हैं, हमारे तो प्लॉट बुक हो गए, और ताहिर भाई का क्या उनसे पूछे।
वैसे उन्होंने 10 दिन ना पता ही
कितनी खुशी में गुजारे,
कितनी इनकी फ्लाइट, मैंने कहा चलो भाई अपना एक दिन फोन किया, मैं कहता भाई सब खैरियत है, फोन ना उठाए कार्ड भी, मैं अच्छा मैं वॉइस पे जा रहा है, फिर दोबारा की नहीं उठाया, मैंने फिर व्हाट्सएप मैसेज किया, तो कहते यार मैं बिजी हूँ थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मैंने चलो बंदा बिजी होगा कि काम वाम पर कॉल की, मैंने किधर हो, कहते यार टब में ना आ रहा हूँ, मैंने क्यों, कहता पार्टी कर रहा हूँ, सुकून है, तब मैं नहाता हूँ, उठ के कहीं चला जाता हूँ, अपनी मर्जी से खाता हूँ, अपनी मर्जी से टीवी खेल लेता हूँ, चिप्स खा लेता हूँ, कोई पर पूछने वाला नहीं
है लाइफ यार।
यहाँ मैं पहले भाई आऊँ भाई सवाब अपना अपना तू अपनी वाली को ये कहते ये अपना अपना कोई कॉम्पल
अपना अपना दोजक
दोजक अपनी जन्नत अपनी कहते भी मैं जन्नत में हूँ मैं दोजक भेज दिए।
वैसे आपसे उन्होंने क्या सीरियसली ऑन द सीरियस टॉक आपके टेलीफोन वगैरह जवाब दिया उन्होंने?
मेरे फोन
नहीं किया,
नहीं मैंने किया ही नहीं
ये नहीं करेंगी,
हमने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया, दोनों मजे कर रहे थे।
हाँ, हाँ, हाँ। नहीं करेंगे मतलब एक आदमी फुल लेमन लेके बैठा हुआ है, हाँ। विकास वाली फील, तब मैं बैठा हुआ हूँ, टीवी चल रहा हूँ,
टीवी चल रहा है वहाँ पर,
टीवी चल रहा
हूँ, टीवी जो है वो अपना वॉशरूम में मूव कर दिया,
बस एंजॉय
एंजॉय का मजा लो।
व्हाट अ लाइफ मैन।
जाती है यहाँ से अभी 8:30 बजे जाएंगी, टायर वो सामने से खाना ले आओ, वो ये ले आओ, टायर घास काट दी, टायर ये कर दिया, टायर वो कर दिया, गैस भरा दी, मेरी सुबह जल्दी जाना है। अरे बंदा बोले यार तू तेरी गैस एक ही बार डाल के उड़ा दू तू। दस दिन जो उन्होंने गुजारे हैं वो उनकी लाइफ से बेहतर रहेंगे,
जन्नत मिल गई है उनको।
कहते ना शेर की एक दिन की जिंदगी
बीवी की बहुत सारा जिंदगी से बेहतर है।
पता क्या
एक दिन
उनकी उनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई, कोई कोई कोलेस्ट्रॉल
और मोटा हो गया वो,
है ना, शुगर कोलेस्ट्रॉल हाई ब्लड प्रेशर वगैरह सब खत्म।
मेरी एब्सेंस में वो डॉक्टर